हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 87। आह, हमारा सिर कहाँ कहाँ पर हूँ मैं तो वहाँ पहाड़ी पर था कल रात, और अभी तो इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? कौन कौन है यहाँ? कोई है? होश में आते ही समर ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए ये सब कुछ कहा, और उसके चिल्लाने की आवाज वहां पर गूंज रही है क्योंकि वो एकदम अंधेरी काली गुफा है जिससे टकराते हुए सारी आवाज उसे तक वापस आ रही है। लेकिन समर को ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहां पर कैसे आया। कोई है, बचाओ हमें, निकलो यहां से। समर ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने हाथ पैर बंधे हुए महसूस हुई, जबकि कोई भी रस्सी या जंजीर उसे नजर नहीं आ रही। लेकिन फिर भी वो खुद को उस जगह से हिला भी नहीं पा रहा है। बचाओ, लेकिन किस? हमारे चंगुल से तो अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारी रानी श्वेतलाना को तुम पसंद आ गए हो, और अब तुम यहां से कभी भी नहीं निकल पाओगे। किसी लड़की की ये आवाज समर के कानों में पड़े, और ये आवाज सुनकर वो एकदम ही सहम गया, क्योंकि इतना बोलकर वो लड़की हंसने लगी, और उसके हंसने की आवाज भी वहां पर गूंजती हुई बहुत भयानक लग रही है। लेकिन तभी समर को ऐसा लगा वो हंसने की आवाज गूंजने के साथ ही एक से ज्यादा हो रही है, जैसे कि एक से दो, फिर तीन और चार, पांच लोगों के हंसने की आवाज उसे आ रही है। लेकिन वो सारी आवाजें औरतों की ही लग रही है, जो कि एकदम चुड़ैलों की तरह ही हंस रही है। इसलिए समर बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसे अपना गला एकदम सूखता हुआ सा महसूस हुआ, जिसे कि वो बस थूक निगलकर ही गीला कर सकता है और कुछ नहीं। अपने गले में फंसे हुए थूक की तरह ही अपनी जान भी समर को वहां पर अटकी हुई नजर आ रही है, जिससे बचने के लिए वो फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, बचाओ हमें, निकलो यहां से, वीरेश चंद्र का वसुंधरा, कोई तो हमारी आवाज सुनो। बचाओ, तो इस तरह से चिल्ला रहे हो जैसे कि हम तुम्हारी इज्जत लूट रहे हैं। कर ही क्या रहे हैं आखिर, हम तो हम तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि हमारी रानी का दिल तुम पर आ गया है और वो आने वाली एकादशी को तुमसे विवाह करेंगी। समर की आंखों के सामने एक सफेद साया मंडराता सा नजर आया, जो कि हवा में एकदम उड़ते हुए धुएं की तरह लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। ऐसे में तुम लोग कैसे क्या बोल रही हो, और हो कौन तुम लोग? समर ने एकदम ही विनती करने वाले अंदाज में कहा, और इतना बोलते हुए वो लगभग रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं, क्योंकि वो खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा है। बिना किसी हंसी के इस बार एकदम गंभीर आवाज में उसे औरत ने समर को चेतावनी देते हुए कहा, भूल जाओ ऐसा, तो अब तुम्हारे सपने में भी नहीं होगा, क्योंकि यहां सब आते भी हमारी रानी की मर्जी से है और जाते भी उनकी मर्जी से हैं, और तुम्हें छोड़ने का तो कोई भी इरादा नहीं है अभी हमारी रानी का, इसलिए यहां से जाने के बारे में कभी भी मत सोचना। उसकी ये बात सुनकर समर एकदम ही चुप हो गया, क्योंकि वो समझ गया कि इस तरह से बोलने चिल्लाने या उससे कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं है साथ वादा का। दूसरी तरफ पहाड़ी पर चंद्रिका और वीरेश के बीच काफी टाइम से बहस चल रही है, लेकिन फिर चंद्रिका ही आखिर चुप हो गई, क्योंकि वीरेश काफी गुस्से में लग रहा है और उसे चंद्रिका पर रह रहकर गुस्सा आ रही है, और उससे ज्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रही है कि क्यों वो चंद्रिका के साथ वहां पर आया। वो अकेले जाकर भी वसुंधरा को ढूंढ सकता था, और तब उसे कम मेहनत करती और उसका दिमाग कम खराब होता। सब कुछ सोचे विचारने के बाद चंद्रिका को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वो तुरंत ही वीरेश से माफी मांगती हुई बोली, अच्छा ठीक है, हमें माफ कर दो, हम ही तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आए थे, और हमें तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है, और तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही कर रहे होगे, क्योंकि इस तरह से समय बर्बाद करना किसको अच्छा लगता है। चंद्रिका बोल ही रही थी कि तभी वीरेश ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, चुप रहो एक पल के लिए, मुझे राजकुमार समर की आवाज आ रही है, वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन किस तरफ से? अगर तुम थोड़ी देर नहीं बोलोगी तो मुझे समझ आ जाएगा। वीरेश ने उसे इस तरह से चुप रहने को कहा तो चंद्रिका पहले तो थोड़ा सा चौंक गई, और फिर बहुत ही उलझन के साथ बड़ी आंखें करके वीरेश की तरफ ही देखने लाओगी। वो अपनी आंख बंद करके एकदम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा होगा, वो आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो आवाज अभी भी उसके कानों में पड़ी वो राजकुमार की ही है, इतना तो वो समझ चुका है, क्योंकि जंगल में वहां पर ज्यादा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पल के बाद एकदम ही वीरेश ने अपनी आंखें खोली और उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां उसी तरफ है राजकुमार समर, चलो जल्दी, हमें वहां पर ही जाना होगा, या फिर तुम यहां पर ही रुको, मैं अकेले वहां जाता हूँ। समर ने वहां उसे पहाड़ी से थोड़ा दूर मौजूद दूसरे पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा और उसके वहां रुकने की बात सुनकर चंद्रिका तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने कहा, हम भी साथ ही आएंगे क्योंकि हमें यहां पर नहीं रुकना। यहां इतने सारे खतरे हैं और ऐसे में क्या तुम हमें अकेला छोड़कर आगे चले जाओगे? वैसे भी हम साथ होंगे तो कुछ ना कुछ मदद ही कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम साथ आ सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं बस ये नहीं चाहता कि कहीं तुम भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ, तो फिर मैं समर को ढूंढूंगा या फिर तुम्हें बचाऊंगा। नहीं, अभी तुम इन सब के बारे में मत सोचो, चलो जहाँ पर भी राजकुमार समर है हमें उधर ही जाना है और हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं और ध्यान रखेंगे भी। तुम हमारे बारे में मत सोचो, हमें कुछ नहीं होगा और हम तुम्हारे लिए भी कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं, चंद्रिका ने तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। तो उसकी ये बात सुनकर वीरेश के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कराहट आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे चंद्रिका का पछतावा और उसका मजबूत इरादा नजर आ रहा है, इसलिए वो दोनों तुरंत ही वहां से दूसरी पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। इतने सारे लोग विक्रांत को ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी मुझे ये बात विक्रांत तक पहुंचानी होगी, क्योंकि अगर उन लोगों ने विक्रांत को ढूंढ लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। मैं नहीं चाहता उन लोगों का आमना सामना हो। रात के अंधेरे में नरेंद्र ठाकुर उन सिपाहियों को पीछे छोड़कर वहां से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने महात्मा को भी नहीं बताया है, लेकिन महात्मा को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो विक्रांत को हराने के बारे में पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए ही उन्होंने अपना रक्षक दल तैयार किया हुआ है और वीरेश उनका सबसे काबिल शिष्य था। उन्हें लगा था कि वीरेश विक्रांत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनेगा, लेकिन जब से वसुंधरा को महल से विक्रांत लेकर गया है और वीरेश बुरी तरह उसके सामने हार गया था और कुछ भी नहीं कर पाया था, तब से महात्मा को इस बारे में दोबारा से सोचना पड़ रहा है।
महात्मा और नरेंद्र ठाकुर दोनों का एक ही मकसद है, वो है उसे जन्मों के श्राप को खत्म करना जो कि उन दोनों के जरिए विक्रांत पर लगा है, और शैतान का अंश बनाकर विक्रांत के रूप में इस धरती पर जन्म ले चुका है, और अब उसका मकसद है अपना काला साम्राज्य स्थापित करना, जिसके लिए वो वसुंधरा की शक्ति लेना चाहता है जो कि असल में चंद्रिका के पास है। महात्मा को इस बारे में पता है और उन्होंने किसी तरह विक्रांत को अभी तक सच पता चलने नहीं दिया है, लेकिन वो इस बारे में जानते हैं कि काल अमावस्या, जो कि 70 सालों में एक बार आती है, उस दिन अगर विक्रांत को उसकी सारी शक्तियां और वसुंधरा की देवी शक्तियां भी मिल गईं, जो कि असल में चंद्रिका पर है, तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा और वो अपनी मनमानी करते हुए किसी को भी आसानी से हरा देगा। इस बारे में सोचते हुए महात्मा बहुत ही परेशान हैं और जब से वो ध्यान से बाहर आए हैं इसके लिए ही योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आया है। और तभी उन्होंने देखा कि दो शिष्य उनके आसपास ही मंडरा रहे हैं। उनके पीछे बिना पीछे मुड़कर देखे ही महात्मा को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने एकदम गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों को कुछ बात करनी है तो यहां मेरे सामने आकर बोलो। महात्मा की ये बात सुनकर शिवानी और सक्षम दोनों ने ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि महात्मा पीछे मुड़े बिना ही उन दोनों के मन की बात समझ गए। महात्मा ऐसा कर सकते हैं, इस बारे में बचपन से ही उन दोनों को पता है, जब से वो दोनों आश्रम में हैं, और बाकी सारे लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी जब जब ऐसा उन सब के साथ होता है तब वो हैरान होते हैं ना चाहते हुए भी। इसलिए शिवानी ने सक्षम की तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं, अगर गुरुजी मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझे आश्रम से निकाल दिया तो मैं उन्हें ये सच नहीं बता सकती। शिवानी की ये बात सुनकर सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन अगर तुम इसी तरह से झूठ बोलोगी और ये बात छुपा कर रखोगी तो और भी कई सारी परेशानी आ सकती है, और अगर तुम गुरुजी से माफ़ी मांग लोगी तो फिर वो तुम्हें आश्रम से बाहर निकालने की सज़ा नहीं देंगे। चलो पहले गुरुजी को ये बात बताओ। इतना बोलते हुए सक्षम ने शिवानी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे खींचकर गुरुजी के सामने लेकर आया। गुरुजी, शिवानी आपसे कुछ कहना चाहती है, काफ़ी दिनों से, और ये बात वीरेश से जुड़ी हुई है। शिवानी बोलो। शिवानी की तरफ से बोलते हुए सक्षम ने पहले महात्मा से कहा और फिर शिवानी की तरफ देखकर बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें वीरेश के यहाँ से जाने के बारे में पता है, और आज से नहीं, जब मैं पहली बार पूछा था तब भी तुम्हें पता था। वीरेश तुम्हारे सामने ही यहाँ से गया है ना शिवानी, तो बताओ फिर तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई? महात्मा ने एकदम गंभीर चेहरे के साथ शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, तो शिवानी तुरंत ही महात्मा के सामने जमीन पर घुटने के बल बैठकर अपना सर भी जमीन पर रखते हुए बोली, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ये बात उसी दिन ही बता देनी चाहिए थी जब आप पूछ रहे थे। भला आपसे कोई बात कहाँ छुप सकती है, फिर भी मैंने ये बेवकूजी की। इतना बोलते हुए वो रोने लगी और उसे इस तरह से रोते देख सक्षम भी घुटने के बाल उसके पीछे ही वहां पर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर रोने के बाद शिवानी जब पहले से कुछ शांत हुई तो वो सीधी होकर बैठी, लेकिन वो अभी भी घुटने के बाल बैठी है और सक्षम भी उसके बगल में घुटने के बाल ही बैठा हुआ है। और फिर नज़र उठाकर गुरुजी की तरफ देखते हुए शिवानी ने पूरी बात बता दी। गुरुजी को पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि अगर वीरेश वहां से गया है तो ज़रूर राजकुमारी वसुंधरा को ढूंढने में गया होगा, क्योंकि उसे इस बात का पछतावा होगा कि उसका रक्षक होने के बावजूद भी वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया। ये बात समझ आते ही गुरुजी के माथे पर बल पड़ गए और वो इस बारे में ही सोचने लगे, लेकिन उन्हें शायद पता है कि वीरेश कहाँ जा सकता है। कहानी जारी है। क्या लगता है आप सबको, वीरेश और चंद्रिका पहुंच पाएंगे राजकुमार समर तक? और कौन है महारानी श्वेतलाना? और शिवानी को क्या सजा देंगे उसके गुरुजी? और ये बात पता चलने के बाद अब क्या वो आसानी से पहुंच पाएंगे वीरेश तक? वो उसे वापस लेंगे या फिर उसकी मदद करेंगे वसुंधरा को ढूंढने में? क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए।